ओम ज्ञानति मिरांदश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है और आज सुबह हमने चर्चा नहीं की थी, श्रील प्रभुपाद का भागवतम क्लास था। तो मैंने सोचा कि आज टेंपल डिवोटीज का ये पहला क्लास है एक प्रकार से, तो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में हम कुछ समय के लिए हम मिलकर सुन सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर उनके नाम के अनुसार ही उनके जो कार्य है वो बहुत अधिक गौरवशाली है। चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने से पूर्व उन्होंने तीन अपने प्रमुख लीडिंग जो प्रीचर्स हैं, प्रचारक हैं, उनके बारे में बताया था। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं और जगन्नाथपुरी में कई दिनों तक निवास करने के बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में जाते हैं। वहां से आते ही चैतन्य महाप्रभु को लगा कि बहुत दिन हो गए मैंने गंगा का दर्शन नहीं किया है और अपनी माता सची माता का दर्शन नहीं किया है, तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, लेकिन कौन सी दिशा से, नवद्वीप से होते हुए गंगा का दर्शन या गंगा स्नान भी करना चाहता हूं और सची माता का दर्शन भी करना चाहता हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकलते हैं। तो बल्कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकले तो कोई अकेले नहीं निकले थे, उनके साथ में हजारों भक्त निकल रहे थे। जगन्नाथपुरी के जितने भी प्रोमिनेंट महत्वपूर्ण भक्त थे वो भी चैतन्य महाप्रभु के संग में वृंदावन जाने के लिए तत्पर हो गए। सार्वभौम भट्टाचार्य से लेकर रामानंद राय, गदाधर पंडित, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर, मुकुंद, बहुत सारे भक्त। और बल्कि राजा प्रताप रुद्र तो बहुत अधिक खुश थे क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने का मौका मिल रहा था। उन्होंने कहा जहां जहां चैतन्य महाप्रभु निवास करेंगे, उन्होंने रामानंद राय को आदेश दिया और उनके जो प्रमुख सेनापति आदि थे उनको आदेश दिया कि जहां जहां चैतन्य महाप्रभु जाएंगे उन स्थानों में उनकी रहने की व्यवस्था करो, उन स्थानों में नया घर बनाओ और जिन जिन तीर्थ स्थानों में, नदियों में, महाप्रभु जिन स्थान में, घाट में स्नान करेंगे वहां बहुत बड़े बड़े स्तंभों का निर्माण करो। मैं स्वयं ऐसे स्थान में स्नान करना चाहता हूं और ऐसे स्थान में अपने देह का त्याग करना चाहता हूं। तो ऐसे प्रताप रुद्र की इच्छा थी। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ओरिसा होते हुए बंगाल पहुंचते हैं और बंगाल, बल्कि इस यात्रा का चैतन्य महाप्रभु का प्रमुख उद्देश्य था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मिलना। ये जो उनकी पहली वृंदावन यात्रा थी। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं, राम के लिए जाते हैं और वहां जाकर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को, जो दबीर खास और साकर मल्लिक थे, संध्या के समय में मिलते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं, उनको उनका नामकरण करते हैं, उनको दीक्षा आदि प्रदान करते हैं और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वापस निकलते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने जब देखा कि इतने सारे लोग महाप्रभु जब चलते थे, जहां जहां चैतन्य महाप्रभु चरण रखते थे, हजारों लोग दौड़ते थे उस स्थान की मिट्टी को लेने के लिए। तो जिस स्थान में महाप्रभु के चरण पड़े थे उस स्थान में गड्ढा बन जाता था, तो पूरे रास्ते में गड्ढे गड्ढे बन गए थे। तो ऐसे फिर सनातन गोस्वामी ने कहा कि वृंदावन जाने की ऐसी परिपाटी नहीं है, वृंदावन तो अकेले जाना चाहिए या एक या दो व्यक्ति साथ होने चाहिए। आप तो एक जादूगर की भांति जा रहे हो अपनी बड़ी पूरी सर्कस को लेकर, तो ये वृंदावन जाने की रीति नहीं है। जब ऐसे बोला सनातन गोस्वामी ने, हाँ, तो महाप्रभु दूसरे दिन सनातन गोस्वामी के बात को उस बात पर विचार करने लगे। उन्होंने कहा ये उचित है सनातन की जो बात है। तो उसी क्षण दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने निर्णय लिया कि मुझे वापस जगन्नाथपुरी में जाना है, मैं इतने आडंबर के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहता। तो फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन सुबह रामकेली निकलते हैं, रामकेली से वापस आते हैं और वापस आकर एक स्थान है जिसका नाम है कानाई नटशाला। वहां भी इस्कॉन का बहुत, मायापुर इस्कॉन ने वहां बहुत अच्छा सेंटर डेवलप किया है कई एकड़ लैंड्स में, मायापुर जैसा ही वो सुंदर अधिक रमणीय स्थान है कानाई नटशाला। तो वहां चैतन्य महाप्रभु जब आए, वहां उन्होंने स्नान आदि करण किया और फिर निकलने लगे आगे। तो वहां जब गंगा स्नान करने के लिए वहां गए, पद्मा नदी थी वहां, तो चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह फिर कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के संग में, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। सब लोग नाच रहे थे, लेकिन फिर देखा कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के बीच बीच में एक नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। क्या कहते जा रहे थे? नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। अभी सब भक्तगण चकित हो गए कि ये क्यों महाप्रभु के मुख से कभी कृष्ण नाम के अलावा कोई और नाम हमें कीर्तन में सुना नहीं था, लेकिन आज चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम 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 करते हुए जा रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने फिर सोचा, और कैसे महाप्रभु नदी के उस पार एक गांव था जिसका नाम था गडेरहाट या फिर बाद में खेतुरी, तो उस गांव की ओर देखकर चैतन्य महाप्रभु उच्च स्वर से कीर्तन के बीच में नरोत्तम नरोत्तम कहते थे और भावावेश में आकर मूर्छित होकर गिर पड़ते थे, फिर गोविंद गोविंद का उच्चारण करते हुए खड़े हो जाते थे। तो फिर इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु आदि जो भक्त लोग थे वो सोचने लगे कि जरूर कोई महान व्यक्तित्व का आगमन इस जगत में होने वाला है, क्योंकि महाप्रभु अपने इस वाणी से ये प्रकट करा रहे हैं कि एक महान वैष्णव आने वाला है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उनको सबसे अधिक चिंता थी अपने आंदोलन के भविष्य की, इस आंदोलन को मेरे जाने के बाद किस प्रकार से ये आंदोलन और फैलेगा और कैसे बनाए रहेगा, इसके बारे में महाप्रभु सदैव जगन्नाथपुरी में चिंता करते थे। तो ये नरोत्तम नरोत्तम कहते हुए फिर नित्यानंद प्रभु और ये सारे लोग उस नदी में उन्होंने प्रवेश किया स्नान करने के लिए, और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नदी का स्पर्श किया जल का, तो उसी क्षण उसमें कई सारे तरंगे उठने लगे और वो नदी स्वयं मूर्तिमान रूप में प्रकट हो जाती है और वो कहती कि मैं क्या आपकी सेवा कर सकती हूँ। तो महाप्रभु क्या करते हैं, उसके पास अपना जो ये प्रेम है जिसका वितरण वो करने के लिए आए थे, गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये जो गोलोक से उन्होंने कृष्ण प्रेम रूपी धन को लाए थे उसका वितरण करने के लिए वो आए थे। तो उन्होंने उस नदी के पास ये अमूल्य जो धन है इसको उन्होंने उनके पास सौंपा, दे दिया और उनको कहा कि आगे चलकर एक बालक तुम्हारे पात्र में स्नान करने के लिए आएगा, तुम उसे ये मेरा दिया हुआ जो भगवत प्रेम है तुम उसे प्रदान करो। तो उसने कहा कि मैं कैसे पहचानूंगी उसे, कौन वो बालक होगा? महाप्रभु ने कहा जिस प्रकार से मेरे स्पर्श के कारण, मेरा स्पर्श होते ही तुम्हारे पूरे देह में या जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी, कंपायमान होने लगी, उसी प्रकार से वो बालक भी जब प्रवेश करेगा तुम्हारे पात्र में जल में तो इसी भांति बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगेगी, तो तुम समझ जाओ कि यही वो बालक है। तो फिर वास्तव में अब महाप्रभु का जो प्रेम है जो चैतन्य महाप्रभु ने रखा था उस नदी के पास, फिर आगे चलकर कृष्णचंद्र दत्त जो राजा थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य राज परिवार में हुआ था। तो ऐसे कृष्णचंद्र दत्त, और वास्तव में जो भक्तिविनोद ठाकुर है केदारनाथ दत्त, ये नरोत्तम दास ठाकुर के वंश में आते हैं आगे चलकर। तो ऐसे कृष्णचंद्र दत्त के घर में नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य होता है। बचपन में उनको जब उनका वो जब जन्म लिए थे, तो राजा के पुत्र थे, तो उनके जो अन्न प्राशन सेरेमनी है या नाम संस्कार आदि है, बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे थे। जब अन्न प्राशन संस्कार मनाया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, पंडित या ब्राह्मण आदि, और उस बालक को अन्न खिलाया जा रहा था। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम जो बालक थे, वो अपना मुंह बंद किए हुए थे और रोते जा रहे थे। तो सबको लगा ये क्या अपशकुन है कि आज अन्न प्राशन संस्कार है, इतने सारे वैष्णव मंडली या ब्राह्मण आदि एकत्रित हुए हैं, लेकिन ये बालक अन्न को स्वीकार नहीं कर रहा है और ना ही अपना रोना बंद कर रहा है। तो वहां एक डिवोटी थे, वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि ये जो अन्न है सबसे पहले कृष्ण को अर्पित करो और उसके उपरांत इस बालक को खिलाओ तो वो ग्रहण करेगा। तो फिर जैसे अर्पित किया उस भोगा को, तो नरोत्तम जो छोटे से ही थे अभी भी, बहुत ही छोटे, उन्होंने उसको ग्रहण किया। और जैसे बड़े हो गए तो माता पिता के एकलौते पुत्र थे और राजकुमार थे। नरोत्तम दास ठाकुर का जो सौंदर्य है वो चैतन्य महाप्रभु के समान था। ऐसे कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो जब मूर्तिमान रूप धारण करता है, वो कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब थोड़े से बड़े हो गए, बालक ही थे, तो वो अपने जब पढ़ाई के लिए जाते थे, गुरुकुल में पढ़ने जाते थे, शाम को वापस आते थे। लेकिन जैसे वापस आते थे तो उनको बचपन से ही सर्वाधिक आकर्षण गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति था। तो जैसे वो वापस स्कूल से आते थे, तुरंत उनके गांव में एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था कृष्णदास, वो सदैव महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते रहते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने घर से संध्या के समय भाग जाते थे और कई घंटे तक उस ब्राह्मण का संग करते थे, जिनसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, नित्यानंद प्रभु के बारे में, महाप्रभु के पार्षदों के बारे में, हरिनाम संकीर्तन के बारे में हर रोज वो सुना करते थे। ये उनका फिक्स एक प्रोग्राम था संध्या के समय में। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का इतना प्रगाढ़ आकर्षण चैतन्य महाप्रभु के लिए हुआ, नित्यानंद प्रभु के लिए हुआ, कि उनको रहा नहीं जा रहा था। अब उनका अपना घर, अपना परिवार, ये सब एक कारागृह के समान प्रतीत हो रहे थे, जेल के भांति उनको प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने वो केवल रोते रहते थे कि कब वो दिन आएगा, कबे हम हबो वृंदावन वासी, कब मैं वृंदावन का निवासी बनूंगा, कब मैं ब्रज भूमि में निवास करूंगा। इसी एक भावना को, इसी एक विचार से वो सदैव क्लांत रहते थे। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु उनको स्वप्न में आदेश देते हैं कि हे नरोत्तम, और वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ब्रज वृंदावन की कृपा या चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे लिए असंभव है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच करना चाह रहे थे, लेकिन वास्तव में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के धन है। इसलिए नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे तुम तो चोर हो, मेरा धन आप चुरा रहे, दूसरे का धन चुराने का जो प्रयास करता है वो चोर है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, तुम चोर हो तो मैं दंड दूंगा, और दंड क्या दिया था? चिड़ा दही फेस्टिवल, चिड़ा दही सारे वैष्णव मंडली को वितरित करो। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, नरोत्तम दास ठाकुर छोटे से बालक ही थे, उनके स्वप्न में आते हैं और उनको कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य ने तुम्हारे लिए जो भगवत प्रेम है वो रखा है। महाप्रभु को कितनी चिंता है अपने ऐसे महान मान भक्त के बारे में, जो फ्यूचर के बड़े प्रचारक हैं, महान आचार्य हैं। तो ऐसे महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने स्वप्न में उनको आदेश दिया और कहा कि आप क्या करो, पद्मा नदी, पद्मा नदी क्या है, जब गंगा बंगाल में पहुंचती है तो वो गंगा कई शाखाओं में विभक्त होती है, बंगाल, बांग्लादेश, कई स्थानों में बहुत सारी शाखाएं होती हैं। तो अलग अलग जितनी शाखाएं हो गई है उनके बहुत सारे नाम है गंगा के आगे, तो वही पद्मा नदी है जो बंगाल बांग्लादेश में है, खेतुरी ग्राम के पास। तो नरोत्तम जिनको उनकी माता नारू कहा करके पुकारते थे, तो ये बालक जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का आदेश था सुबह उठते ही गौर नित्य का स्मरण करके भावावेश में आकर सबसे पहले वो गंगा की ओर दौड़ने लगते हैं। और दौड़कर जब वो पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं जल में, तो वास्तव में ऐसे हो रहा था कि जैसे सुनामी आ गई हो, बहुत सारी लहरें उछलने लगी पद्मा नदी में। और पद्मा नदी समझ गई कि ये साक्षात वही बालक है जिसके लिए जो चैतन्य महाप्रभु ने ये प्रेम मेरे पास संभाल के रखा था। तो उन्होंने उस भगवत प्रेम को उनको सौंपा और वो बिल्कुल ही, तब से जो नरोत्तम दास ठाकुर है वो बिल्कुल पागल हो गए। तो इतने अधिक पागल हो गए, उस समय सुबह से वो गए थे, बल्कि उनकी माता पिता उनको सुबह से किसी शाम तक ऐसे खुला छोड़ते नहीं थे, लेकिन पूरे गांव और सब जगह उनको ढूंढने के लिए लोग भेजे गए और वो स्वयं ढूंढ रहे थे पूरे गांव में कई स्थानों में, तो लेकिन ये मिल नहीं रहे थे। लेकिन उनकी माता जब नदी के किनारे गई दूर, तो वहां देखा कि उनका बालक है, लेकिन दिखने में उनका बालक लगता है लेकिन उसका रंग परिवर्तित हो गया है। पहले वो श्याम वर्ण के थे लेकिन अभी सुबह श्याम वर्ण के थे, लेकिन संध्या के समय में अभी वो गौर वर्ण के हो गए थे और बिल्कुल स्तब्ध हो गए थे। गौर गौर गौर, कृष्ण 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 का उच्चारण उनकी जीवा सदैव कर रहे थे। उनकी माता डर गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। उन्होंने नजदीक लिया नरोत्तम को और नरोत्तम को पूछा गया, बेटा क्या तुम्हारी हालत ऐसे कैसी हो गई। बल्कि उनके माता पिता को लगा कि ये भूत ने इसको पकड़ा है। उन्होंने कहा, एक गौर वर्ण का बालक आया और उसने मेरा आलिंगन किया। नरोत्तम ने कहा, उस गौर वर्ण के बालक ने जब मेरा आलिंगन किया, तब से मैं सब भौतिक एक प्रकार से भौतिक जीवन को भूल गया हूं और मेरी जीवा बिना कृष्ण नाम लिए हुए, बिना गौरांग का नाम लिए बिना रह नहीं पा रही है। और वो निरंतर महाप्रभु और चैतन्य या नित्यानंद के विरह में रोदन करने लगे। तो कैसे, तो उनके माता पिता घर लेके आते हैं, फिर एक ओझा को बुलाया जाता है, जो ओझा जो भूत प्रेत उतारने वाला है। तो कहा, उस ओझा ने कहा कि जो जैकल होता है या सियार होता है उसका ब्रेन होता है ना, क्या कहते हैं, ब्रेन, दिमाग निकालना पड़ेगा, जो भी है निकाल के उसका कोई सूप बनाना पड़ेगा और वो पिलाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो नरोत्तम कहते हैं कि क्यों, मेरे लिए एक पशु का आप हत्या कर रहे हैं। बहुत करुणा थी उनके हृदय में। उन्होंने कहा, यदि आप सियार को मारोगे तो मैं परमानेंटली इस ग्रह का त्याग करके चला जाऊंगा या अपना शरीर त्याग दूंगा। तो कृष्णचंद्र दत्त शांत हो गए और फिर तब से उनकी जो विरह वेदना है, वृंदावन का जो वियोग है, वो बढ़ते ही जा रहा था। फिर ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर फिर एक दिन वहां के जो मुस्लिम शासक थे, उन्होंने उनके पिता को किसी मीटिंग आदि के लिए बुलाया। तो नरोत्तम दास ठाकुर अकेले घर में थे और किसी कारण से तो फिर दूसरी जगह भी बुलाया जा रहा था। तो नरोत्तम दास ठाकुर उनके सेना के साथ जाने लगे, तो रास्ते में ही नरोत्तम दास ठाकुर उस स्थान को छोड़कर, उन संगियों को छोड़कर भागने लगते हैं। बल्कि उससे पहले वो नवदीप जाते हैं, शांतिपुर जाते हैं, खड़दा जाते हैं, नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान जाते हैं, सब प्लेसेस में जाते हैं और फिर फाइनली फिर यहाँ वृंदावन की ओर इस समय वो दौड़ते हैं। और कई दिनों तक उन्होंने बिना खाए बिना पिए दौड़ते दौड़ते बनारस आते हैं, जहाँ वो स्मरण करते कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती आदि का उद्धार किया था। और वहां इलाहाबाद आते, वहां वेणी माधव आदि का दर्शन करते हैं। फिर वहां से वर्णन आता है कि वो मथुरा आते हैं और मथुरा आने के बाद, बल्कि उनके हृदय में एक इच्छा थी, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर जब वहां थे तभी चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि कि महाप्रभु का आदेश है कि तुम वृंदावन जाओ और वृंदावन जाकर लोकनाथ गोस्वामी की जो शरण है वो स्वीकारो, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करो। बल्कि लोकनाथ गोस्वामी जब नवद्वीप में थे तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजने से पहले ही कहा था, तुम वृंदावन जाओगे तो एक भक्त को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करो। और महाप्रभु ने पहले से नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से पहले से कहा था उसका नाम नरोत्तम होगा और ऐसा भक्त होगा, ऐसा वैष्णव होगा कि वो जब कीर्तन करेगा तो जो पत्थर है वो पिघलने लगेंगे। पत्थर ही नहीं, महाप्रभु ने कहा कि जो लकड़ी भी है वो भी पिघलने लगेगी। ऐसा कीर्तन का आवेश, ऐसे कीर्तन की मधुरता नरोत्तम दास ठाकुर में होगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी की शरण स्वीकार करने के लिए अपने स्थान को छोड़ते हैं और दौड़ने लगते हैं। और मथुरा जब पहुंचते हैं विश्राम घाट में वो आकर स्नान आदि करते हैं तो देखते हैं कि दो तीन वैष्णव आपस में चर्चा कर रहे थे कि अरे अरे अभी अभी रूप सनातन वृंदावन को छोड़कर चले गए, अपना देह का त्याग कर दिया है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं और अधिक विरह की यातना उनके हृदय में भर उठती है। और कैसे तो गोविंद देव का जो मंदिर है वृंदावन में वहां पहुंचते हैं। तो उस समय क्या था, कोई भी वैष्णव बंगाल से आता था उनका जो प्रमुख स्थान था वो गोविंद देव मंदिर था। संध्या के समय सारे गौड़िया वैष्णव गोविंद देव मंदिर में आरती कथा कीर्तन आदि के लिए मिला करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आते हैं वृंदावन में तो नरोत्तम दास ठाकुर का स्वागत करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं जीव गोस्वामी और आदि जो अलग अलग वैष्णव गण है वो सारे उनका स्वागत करते हैं। फिर पर्सनली जीव गोस्वामी उनको अलग अलग महान वैष्णव से मिलाते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी से और फिर फाइनली लोकनाथ गोस्वामी से। तो लोकनाथ गोस्वामी से वो दीक्षा की याचना करते हैं और दीक्षा प्राप्त करने के लिए उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी कहते कि मेरे अंदर तो योग्यता है नहीं, मैं क्या अपने अपना शिष्य के रूप में आपको कैसे स्वीकार करूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है। तो लोकनाथ गोस्वामी इस प्रकार से हाँ जब कहते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर का हृदय दुख से भर जाता है और उन्होंने निश्चय किया था कि अपने जीवन को मैं समर्पित कर रहा हूं लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में, इन्हीं को ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में मैं स्वीकार करना चाहता हूं। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो उनकी शरण प्राप्त करने के लिए लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का जो सेवा है अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति या आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए वो किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए तत्पर है। लेकिन बल्कि वो अपने सॉन्ग में कहते हैं कि रूपे पाए वो सेवा मुई दुराचार श्री गुरु वैष्णव रति ना हैला अमार। वास्तव में गुरु और वैष्णव के प्रति आसक्ति नहीं है तो वो सेवा भी, हमें भगवत सेवा प्राप्त करना भी बहुत ही दुर्लभ है। तो कहते कि कैसे होगा मेरे साथ, किस प्रकार से मैं इस दिव्य सेवा को प्राप्त कर सकूंगा, क्योंकि मैं बहुत निकृष्ट हूं, आदम हूं, दुराचारी व्यक्ति हूं। क्यों? क्योंकि मुझ में कोई आसक्ति नहीं है, वैष्णव में नहीं है ना गुरु में आसक्ति है, लेकिन मेरी एक चीज में आसक्ति है, आशेष माया ते मन मगन हैल। मेरा जो मन है माया के कार्यकलापों में पूर्ण रूपेण निमग्न है, सदैव भोग आदि की जो इंद्रिय तृप्ति के विषय है उनके बारे में मैं हमेशा चिंतन करता रहता हूँ, हमेशा उनके बारे में सोचते रहता हूँ। वैष्णवेते लेश मात्र रति न जन्मिल, इसी कारण से इंद्रिय तृप्ति में मेरी आसक्ति है जिसके कारण में मेरी आसक्ति वैष्णव में नहीं है, भक्तों का संग करने में नहीं है, मैं भक्तों के संग से हमेशा दूर भागना चाहता हूँ। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत ही दीनहीन भावना नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट करते हैं अपने गीतों में। तो जब उन्होंने सोचा कि लोकनाथ गोस्वामी मुझे आश्रय नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने देखा कि कैसे मैं उनको प्रसन्न करूं। हाँ, तो वास्तव में एक शिष्य का जीवन ही है गुरु और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए। शिष्य का मतलब है उसका जीवन इसी के लिए समर्पित है, गुरु और कृष्ण की कैसे अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्नता करूं। उनकी प्रसन्नता में ही शिष्य की प्रसन्नता है, उनके आनंद में ही शिष्य का आनंद है। तो ऐसे लोकनाथ गोस्वामी हर रोज अपना सुबह नित्य कर्म करने के लिए जाते थे, मल त्यागने के लिए सुबह सुबह जाते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर वहां उस स्थान को जाकर सफाई करते थे, एक झाड़ू अपने साथ रखते थे हमेशा, और वो झाड़ू से जब लोकनाथ गोस्वामी जहां झाड़ियों में जाकर मल त्यागते थे उस स्थान को वो क्लीन करते थे और वहां फ्रेश मिट्टी लाकर रखते थे ताकि उनको हाथ सफाई आदि करने के लिए, और उस वातावरण को साफ करते थे। और जब वो सफाई हो जाती थी उस झाड़ू को अपने छाती में लगाते थे और रोया करते थे कि कब वो दिन आएगा जब लोकनाथ गोस्वामी की मेरे ऊपर कृपा होगी, वो मुझे अपने एक सेवक के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर कई महीनों तक ये सेवा करते हैं, कई दिनों तक ये सेवा करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी ने एक दिन सोचा, अरे मैं रोज जाता हूं ये नित्य कर्म करने के लिए, और कोई भी कौन है वो व्यक्ति जो उस स्थान को साफ करता है, क्लीन करता है। तो वो झाड़ियों में छिपके देखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर सफाई के उपरांत झाड़ू को छाती में लगा के रो रहे हैं, कृपा की याचना कर रहे हैं। लोकनाथ गोस्वामी आते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनका आलिंगन करते हैं और फिर अपने साथ ले जाते हैं। साथ लेकर फिर उनको एक साल का समय देते हैं। इसका वर्णन नित्यानंद दास अपने ग्रंथ में करते हैं बहुत ही विस्तार रूप से कि नरोत्तम दास ठाकुर को फिर साधना भक्ति के जो नियम है लोकनाथ गोस्वामी सिखाते हैं कि तुम जीव गोस्वामी के अधीन रहकर भक्ति रसामृत सिंधु को गंभीरता से पढ़ो। अलग अलग ग्रंथों को वो रीडिंग के लिए देते कि एक साल तक आपको ये ग्रंथ पढ़ने हैं और इतनी मालाओं का आपको जप करना है और एक साल तक इस प्रकार के कार्यों में आप लगे रहो, उसके बाद मैं सोचूंगा आपको दीक्षा प्रदान करने के लिए। तो इस प्रकार से जब एक साल बीत जाता है तो लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य बनते हैं और बाद में हम जानते हैं कि किस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी की परमिशन लेकर जीव गोस्वामी के आदेशों पर नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन को छोड़कर जाते हैं पुस्तक वितरण करने के लिए। बल्कि ये जो उनको टाइटल है, अलग अलग आचार्यों को जीव गोस्वामी ने अलग अलग उपाधि दी थी, श्रीनिवास आचार्य ये उपाधि श्रीनिवास आचार्य को दी थी और नरोत्तम दास ठाकुर को महाशय उपाधि दी थी। महाशय का मतलब ही है, वो अपने ग्रंथ प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, राधा रजे चरणाश्रय करे से ही महाशय। महाशय का मतलब है कि जो व्यक्ति वास्तव में राधा रानी के चरणों का आश्रय ग्रहण करने में बहुत एक्सपर्ट है या जिन्होंने बहुत प्रगढ़ता से राधा रानी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया है वो महाशय है। तो ये उपाधि उन्होंने प्रदान की थी जीव गोस्वामी ने। की लीला भी आती है कि क्यों उस लीला के कारण ही नरोत्तम दास ठाकुर को उपाधि प्रदान की थी। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर सारे वैष्णव मंडली में वृंदावन में सर्वाधिक फेमस थे और विशेष रूप से मानसिक सेवा में, राधा कृष्ण की मानसिक नित्य लीला में जो सेवा कैसे की जाती है, कैसे करनी चाहिए, उसमें इनका पूर्ण रूपेण अधिकार था। इवन जीव गोस्वामी आदि उनकी प्रशंसा करते थे। जब देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर तत्पर है इस कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित इन तीनों को भेजा, कहा बंगाल भेजा, ग्रंथ सारे गोस्वामी उनके ग्रंथों को लेकर बैलगाड़ी के साथ और कुछ सेवकों के साथ। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन से बाहर जाना पड़ रहा था तो बहुत रोने लगे और फिर फाइनली हम जानते हैं कि एक स्थान में वो सारे ग्रंथ चोरी हो जाते हैं, फिर श्रीनिवास आचार्य वहां रुकते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर को कहते हैं कि आप जाओ खेतुरी ग्राम वहां जाकर आप प्रचार करो। बंगाल में श्यामानंद पंडित को कहते आप ओडिशा का प्रचार, ओडिशा में जाकर प्रचार करो। तो ये सारे तीनों तीन दिशाओं में जाते हैं बंगाल ओडिशा में, और घनघोर जैसे घनघोर वर्षा होती है वैसे ही आचार्य घनघोर बादल के समान अपनी कृपा का वर्षा करते बंगाल और ओडिशा में। तो वहां जब गए नरोत्तम दास ठाकुर तो सदैव उनको अपने भक्तों का या वैष्णवों का विरह में वो रहा करते थे। लेकिन कभी कभी खेतुरी अभी बांग्लादेश में है, वहां से उस स्थान को छोड़कर यहां आते थे। कटवा जो नवदीप के पास स्थान है जहां श्रीनिवास आचार्य रहते थे, रामचंद्र कविराज रहते थे। तो बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, तो नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र कविराज इन दोनों का बहुत अधिक प्रगाढ़ता थी, घनिष्ठता थी। रामचंद्र कविराज तो अभी अभी गृहस्थ बने थे तो, लेकिन रामचंद्र कविराज सदैव नरोत्तम दास ठाकुर के सानिध्य में रहना चाहते थे। जब ये रामचंद्र कविराज का विवाह हुआ श्रीखंड एक गांव है वहां से जब ये डोली क्या कहते डोली बारात जो भी है सारा सारे आ रहे थे, पत्नी वगैरह साथ बैठी हुई थी और रास्ता रास्ते की किनारे यहाँ इसे रास्ता है वहां से जा रही थी बारात, और उधर एक ट्री है आज भी आप जाते हैं वहां जाजे ग्राम है श्रीनिवास आचार्य का गांव, तो वहां एक पेड़ है उस पेड़ के नीचे रोज श्रीनिवास आचार्य प्रवचन दिया करते थे। वहां तीन अलग अलग पेड़ है, उन तीनों के नीचे ये तीन डिवोटीज बैठकर हरि नाम किया करते थे। एक पेड़ है जिसके नीचे ये प्रवचन देते थे, तो जब पीछे से वो बारात गुजर रहे थे तो श्रीनिवास आचार्य ने जोर से बोला उसको सुनाई दे, किसको धूले को सुनाई दे, और धूला कौन थे रामचंद्र कविराज, उनको सुनाई दे कि ये कहा अपने साथ इतना पैसा खर्च करके टेंशन साथ में लेके जा रहा है। भागवतम के कई श्लोकों को जोर से उन्होंने उच्चारण किए तो रामचंद्र कविराज बहुत विद्वान थे, महान वैष्णव थे, उन्होंने जब सुना तो अपने पत्नी के साथ उस रात्रि को घर गए तो केवल वही जो वाक्य है श्रीनिवास आचार्य के उनके कानों में गूंज रहे थे। और जैसे सुबह हो गई पत्नी को छोड़कर वो अकेले आ गए श्रीनिवास आचार्य के पास और उनका आश्रय ग्रहण किया, और उसके बाद वो कंटिन्यूअसली नरोत्तम दास ठाकुर के साथ रहे खेतुरी ग्राम में। तो कभी कभी रामचंद्र कविराज की पत्नी लेटर लिखा करते थे कि मेरे पति को भेज दो, तो वह नरोत्तम दास ठाकुर ने एक दिन डांटा कि तुम्हें जाना चाहिए, इन्होंने कहा जा रहा हूं। तो रामचंद्र कविराज गए लेकिन देखा कि सुबह जब मंगल आरती का टाइम हुआ तो नरोत्तम दास ठाकुर से पहले रामचंद्र कविराज पहुंचे थे और झाड़ू लेकर पूरा जो उनका कैंपस था एरिया था टेम्पल का उसको झाड़ू लगा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में। तो नरोत्तम दास ठाकुर के बिना रामचंद्र कविराज रहा नहीं करते थे, इसलिए वो अपने गीत में कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो इतना प्रगाढ़ता थे उनके अंदर। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे हजारों लोगों को अपनी कृपा प्रदान की, हजारों लोगों को वैष्णव बनाया, और छह विग्रहों की उन्होंने स्थापना की थी। और जो पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है वो नरोत्तम दास ठाकुर ने मनाया था खेतुरी ग्राम में, इतना बड़ा उत्सव मनाया। अपने जो भाई है क्योंकि इन्होंने ये राजा के पुत्र थे और अब ये तो महान एक प्रकार से वैरागी हो गए थे, ये बाकी चीजों से कोई इनका आकर्षण नहीं था। फिर उन्होंने अपने पिता को कहा कि मेरा जो चाचा का बेटा है संतोष दत्त उनको सारा अधिकार दे दो, उनको राजा बनाओ, सारी धन संपदा उनको दे दो। तो संतोष दत्त इनके शिष्य बने नरोत्तम दास ठाकुर के। फिर संतोष दत्त की सहायता से नरोत्तम दास ठाकुर ने महाप्रभु श्री चैतन्य का जो ये गौर पूर्णिमा फेस्टिवल है पहला वो मनाया। तो वो मनाने के लिए कई महीने उन्होंने तैयारियां की और इतने डिवोटीज को उन्होंने बुलाया, बंगाल ओडिशा वृंदावन जहां जहां गौड़िया वैष्णवास थे वहां वहां उन्होंने निमंत्रण पत्रिका भेजी, वहां वहां से वैष्णवों को बुलाया और बुलाकर हर एक की इतनी उचित रूप से व्यवस्था की कि इतने सारे उन्होंने घर बना दिए थे कि जितने वैष्णव आएंगे उनको रहने के लिए कैसी सुविधा होनी चाहिए, उनकी सेवा के लिए कौन होना चाहिए, कितने दिन वो वैष्णव रहेंगे, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा, वो जाएंगे तो उनको उपहार क्या दिया जाएगा, ये सारी व्यवस्था नरोत्तम दास ठाकुर ने की थी। तो जब सारे वैष्णव आए और उस समय सारे वैष्णव में जो प्रधान थे वो जानवा माता थी, लीडर लीडिंग डिवोटी। तो ऐसे जब ये वैष्णवगण आए तो जानवा माता उस फेस्टिवल में भाग लेती है और वो एक सेवा करती है कि जितने भी वैष्णव हैं उनके लिए मैं कुकिंग करूंगी और सर्व प्रसाद सर्व करूंगी। जानवा माता नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है। तो इस प्रकार से जब वो फेस्टिवल हो रहा था, गौर पूर्णिमा का पहला उत्सव, तो सारे डिवोटीज नाच रहे थे, गा रहे थे। फिर जब प्रमुख कीर्तन का समय आया तो कई भक्तों ने कहा कि श्रीनिवास आचार्य आप गाइए, लेकिन श्रीनिवास आचार्य और जानवा माता ने कहा कि नहीं, कौन कीर्तन करेंगे, नरोत्तम दास ठाकुर। तो सारे वैष्णव के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर को बिठाया गया। कई सारे मृदंगा प्लेयर थे, कई सारे पीछे गाने वाले डिवोटीज थे। तो जब मधुर ध्वनि में नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन शुरू किया, इतना तुमुल या इतना बड़ा कीर्तन हुआ कि उस समय, क्योंकि सारे जो प्रमुख प्रमुख आचार्य है या पंच तत्व वो सारे अप्रकट हुए थे, तो वो कीर्तन इतना प्रभावशाली था कि सारे जो आचार्य है या फिर महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, श्रीवास, गदाधर, जितने भी अप्रकट हुए थे वैष्णव, वो सारे प्रकट हो गए उस कीर्तन के बीच में। और नरोत्तम दास ठाकुर के सामने सारे नृत्य करने लगे, सारे नाचते जा रहे थे और सब वैष्णव मैड हो गए। फिर थोड़े समय के बाद नरोत्तम दास ठाकुर ने जब कीर्तन धीमा किया या कम किया, सारे जो पंच तत्वा है वो अप्रकट हो जाते हैं और सारे रोदन करने लगते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रमुख आचार्य है। नरोत्तम दास ठाकुर प्रभुपाद के भी प्रिय आचार्य है। प्रभुपाद जब लंदन गए थे, जब इस्कॉन टेम्पल नहीं बना था, तो उस समय जो जॉर्ज हैरिसन ने उनको रहने के लिए घर दिया था, तो लकड़ी का वो घर था जिसमें प्रभुपाद रहा करते थे। तो फिर प्रभुपाद रोज दोपहर के समय में कीर्तन गाते थे अपना हारमोनियम। पुरुषोत्तम उनके सेवक थे। एक दिन उन्होंने पुरुषोत्तम को बुलाया कि हे पुरुषोत्तम, मेरा हारमोनियम लेके आओ। तो प्रभुपाद इतने अपने सारे कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी वो विशेष रूप से इन वैष्णव आचार्यों के गीतों को गाया करते थे। प्रभुपाद ने कहा कि ये वास्तव में ये जो गीत है ये वैदिक जो ज्ञान है, वेदों का सार है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। हाँ, बल्कि गीता भागवत आदि का निचोड़ विशेष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, इन्होंने इन गीतों में दिया है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। तो जो व्यक्ति उन कठिन चीजों को नहीं समझ पाता उसको इन गीतों का अध्ययन करना चाहिए। तो सारे गौड़ीय जो गौड़ीय संप्रदाय का जो सिद्धांत है वो उस भक्तों को अवगत हो सकता है यदि इन आचार्यों के गीतों को वो गंभीरता से अध्ययन करता है और समझता है। और वास्तव में इन गीतों की रचना भक्ति विनोद ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर ने की है। तो प्रभुपाद अपने व्यस्त समय में भी इनका गान किया करते थे, गाते थे हारमोनियम को लेकर। तो उस दिन उन्होंने हारमोनियम मंगाया पुरुषोत्तम से और फिर उन्होंने अपना कुर्ता निकाला और उनके हाथ में दिया और गाने लगे। आज भी हम वो कीर्तन सुनते हैं। प्रभुपाद ने कई सारे वैष्णव गीत गाए हैं क्योंकि वो रसास्वादन करते थे, इन गीतों का आस्वादन करते थे। तो फिर एक दिन जब वो गा रहे थे तो यमुना माता जी सामने बैठे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, ए यमुना, बताओ तुम्हारा फेवरेट गीत कौन सा है। तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षास्त्रकम चेतो दर्पण मार्जनम। तो अभी उससे भी रहा नहीं गया, उसने भी प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद आपका फेवरेट गीत कौन सा है। तो प्रभुपाद ने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर का एक गीत, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विषखाइनो। तो प्रभुपाद इन गीतों का गान करते थे और इसलिए प्रभुपाद ने नरोत्तम दास ठाकुर का एक जो गीत है वो हमें रोज गाने और मेडिटेट करने हेतु दिया है। कौन सा है वो गीत, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, जो गुरु वंदना है, तो जिसको हम डेली गाते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का आज आविर्भाव है, और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत प्रमुख आचार्य है जिनका हमें स्मरण करना चाहिए, जिनसे याचना, कृपा की याचना करनी चाहिए, ताकि हम गुरु और गौरांग की जो सेवा है उसको गंभीर रूप से कर सकते हैं। तो आज उनके कुछ गीतों को गाया जा सकता है, उनके कार्यकलापों पर मेडिटेट किया जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर का जो चरित्र है बहुत विस्तार रूप से कई वैष्णवों ने वर्णित किया है। हरे कृष्णा। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद की।